इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी डिल्यूजन और सबसे अजीम तरीन गरर यह है कि वो समझता है कि उसकी जिस्मानी नीड्स जो हैं, जो उसकी जिस्म की जरूरियात हैं, खुराक है, उसकी जाहरी जरूरियात हैं, कपड़े हैं, घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लोग हैं, सोसाइटी हैं, ये उसकी रूहानी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। हम इस बात के मुनकर नहीं या दीन इस्लाम इस बात का मुनकर नहीं कि इंसान की रिज्क जो है, उसकी ज़रूरत, उसकी जिस्म की ज़रूरत, उसकी नशोनमा और उसकी तहसीन और उसकी तकमील, उसका दिफा और उसका जमाल, इसको एक्चुलाइज करना और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना उसकी बुनियादी और बेसिक नीड है और उसके राइट्स भी हैं। मगर रूहानी ज़रूरत को, इंसान की कल्बी इत्मीनान को, उसके रूहानी सुकून को, जिसका ताल्लुक उसकी जहनी करार के साथ है, जहनी राहत के साथ है, कल्बी सुकून के साथ है, इसको माइनस करके या इसकी नफ़ी करके इंसान इंसान नहीं रहता तो इंसान सुकून में कैसे आएगा। अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जो रूहानियत को माइनस करके या इसकी ताखीर करके सिर्फ जिस्म की भूख को पूरा करने के पीछे ही लगे रहते हैं, उनको तो कुरान में कहता है अल्लाह उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, ये तो गुमराह हैं और जानवर से भी बदतर हैं। और कहीं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवमन कान मैतन फअहयैनाहू, ये इसी तरह के मुर्दा सोच के लोग ही तो होते हैं जो सिर्फ जिंदगी का मकसद फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना, एक जगह से फिर दूसरी जगह जाना और अपने जिस्म को राहत पहुंचाने का ही जिंदगी का असल मकसद समझते हैं, ये तो मुर्दा दिल लोग होते हैं। फअहयैनाहू, हम इनकी रूह को जिंदा करते हैं हिदायत के साथ जिसको अल्लाह चाहता है। आज से पहले 1943 में एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम इब्राहिम मैस्लो था, उसने एक थ्योरी ऑफ नीड्स और ह्यूमन मोटिवेशन बिहेवियरल साइकोलॉजी के इंसान की नफ्सियात कैसे उसके रवैये और उसके बिहेवियर के ऊपर मुतासर होती हैं, उस पर उसने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने कहा था कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत उसकी फिजियोलॉजिकल, उसकी हिस्सी ज़रूरत है जो कि जिस्मानी ज़रूरत है, खाना पीना पहनना कपड़ा अशिया और यह, और उसके बाद उसने कहा था कि उसकी सेकेंड बड़ी ज़रूरत जो है, दूसरी बड़ी अहम इंसान की ज़रूरत है, उसकी सिक्योरिटी, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़, और तीसरी उसने कहा था कि उसकी तीसरी ज़रूरत इंसान की जो है, जो प्रायोरिटी में आती है, वो है उसका सोशल सर्कल, उसकी बिलोंगिंग, कि वो कौन है, वो कहाँ बिलोंग करता है, उसका कबीला क्या है, उसकी ज़ात क्या है, उसकी मतलब लोग क्या है, उसका सोशल स्टैचर क्या है, उसका सोशल बिलोंगिंग क्या है, माशरा जिसे हम कहते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इंसान की पहले ज़ाती ज़रूरियात हैं, फिर उसके बाद उसकी तहफ़्फ़ुज़ और जिस्म की सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद लोग हैं, फिर उसके बाद रिलीजन है मतलब दीन है, और फिर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, इंसान अपनी हकीकत के कमाल के दर्जे तक पहुँच जाता है। इसका एक लिहाज से तो इस एस्पेक्ट को देखा जा सकता है कि इंसान के रिज़क की ज़रूरत है, खाएगा पिएगा नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेगा। लेकिन सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 38 के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का क्या करें जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला से, जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजरा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में छोड़ दिया बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, जिधर कोई खेती बाड़ी नहीं थी, सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों के बीच के अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई माशरा नहीं था, किसी किस्म का कोई मस्कन नहीं था, कोई खुराक नहीं थी, पानी नहीं था, लोग नहीं थे, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी, ऐसी जगह पर छोड़ के गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ छोड़ के जाएं, कि जहाँ पर ना इंसान था और ना ही किसी किस्म का सहारा। तो उस वक़्त आपने अल्लाह से एक दुआ की, ऐसे आलम के अंदर जहाँ इंसान को पता है कि मेरे बीवी बच्चे ना, उनके पास कोई लोग हैं, ना तहफ़्फ़ुज़ है, ये सारी हायरार्की और नीड्स जो मैस्लो ने कही कि पहले जिस्म की ज़रूरत है, फिर जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, फिर उसके बाद उसको माशरत चाहिए, और फिर कहीं जाके उसको दीन और स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से अम्बिया और इस दुनिया की बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ जो गुजरी हैं, जिन्होंने दीन की खिदमत की और असल में इंसानियत को मकसद समझाया और उसको कमाल तक पहुँचाया अपनी परफॉर्मेंसेज और अपने अमल, अपने तज़क्कुर, अपने तफक्कुर, अपने तदब्बुर से, वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर उनकी दुआ, रब्बना लियुकीमुस्सलात, आपने पहली चीज जिसका कहा या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ यहाँ पर मेरे घर वालों को तू नमाज पढ़ने वाला बना, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی بال بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں پر کچھ نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے بیت محرم کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، کیا کام کریں گے تاکہ وہ نماز قائم کرے، اسپریچویلٹی، دین، تعلق باللہ، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا اللہ کی یاد کے لیے، اسپریچول نیڈز، ریلیجیس نیڈز، اللہ سے قرب پہلے لائے ہیں وہ، فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہم، اور پھر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، معاشرت، یہاں پر مکہ بننا تھا اور پھر یہاں حج کا سیزن آنا تھا، اور پھر دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آج اس جگہ پر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے ڈیمانڈ کی، اللہ کہ اگر دین ہے، روحانیت ہے، تیرے سے تعلق ہے، تیرے سے قرب ہے، زندگی کا مقصد ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم کا کانسیپٹ ہے، نبیوں کی معرفت ہے، تیری معرفت ہے، تیری عبادت کی معرفت ہے، تو انہیں معاشرت بھی دے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اینٹی سوشل لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں میں، سوسائٹیوں میں رہنا چاہتے ہیں مگر دین کو پہلے پریفر کر کے، روحانیت کو پہلے پریفر کر کے، ڈیوائن کانسیپٹس کو پہلے پریفر کر کے۔ پھر دوسری چیز مانگی وہ تھی کیا، یا اللہ ان کو معاشرت بھی دے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اکیلا اس دنیا میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر تیسرے لیول پہ جا کے آپ نے کہا یا اللہ ان کو ثمرات، رزق اور کھانے پینے کی اشیاء بھی عطا فرما یہاں پر، کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیری یہ ساری نعمتوں کا وہ شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لیول تو ہے کہ انسان کی بیسک نیسیسٹی، فیزیولوجیکل نیڈز ہیں، اس کی ذاتی ضروریات ہیں، پھر اس کے بعد اس کا تحفظ ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ معاشرت ہے، پھر معاشرت کے بعد اس کا دین ہے، روحانیت ہے، مگر اعلیٰ ترین قوموں کا اور میکسیمائز آپٹیمائز ورژنس کی قوموں کا اور ایکچولائز ورژن کی قوموں کا، اور وہ قوم ہے جو دنیا میں قیادت بھی کرتی ہیں اور وہ انسان بھی جو دنیا میں قائد بنتا ہے اور نیچے سے اٹھ کے اوپر کے لیول پر آتا ہے، اس کی پہلی ضرورت روحانی ضرورت ہوتی ہے، پھر معاشرت ہوتی ہے، اور پھر وہ رزق اور پیٹ کے ان مسائل کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس دنیا کی اپنی ضرورت سے زیادہ نیڈ کو کراس کر کے وانٹس پر جب جاتا ہے اور ڈیزائرز اور شہوات کے پیچھے لگتا ہے، تو پھر دین بیداری آتی ہے، پھر اس دنیا کی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی زندگی کے اوپر، اس مچھر کے پر جیسی دنیا کے اوپر، جسے سجن المومن کہا گیا ہے کہ مومن کا قید خانہ وجنت الکافر کہا گیا ہے، جسے جناح بعوضہ کہا گیا ہے کہ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ قلیل ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں، انسان اس کو بڑا بناتا ہے اور روحانی، قرآنی، شرعی زندگی سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے مصداق میں اپنی دینی روحانی تعلق باللہ کی ضرورت کو سب سے پہلے پرائیورٹی اور ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔